नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच यरूशलम में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के पारस्परिक संबंध विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के ऐतिहासिक निर्णय को रेखांकित किया। पश्चिम एशिया में अमेरिका की व्यापक सैन्य तैनाती के बीच अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की जिनेवा में वार्ता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को शर्मनाक हरकत बताते हुए इसकी निंदा की, जवाबी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 257 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। भारत और इजराइल ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, भू भौतिकीय अन्वेषण, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, यूपीआई तथा शिक्षा क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया है। यरूशलम में ये समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने दीर्घकालिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
श्री मोदी ने कहा कि आज कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं।
हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि इजराइल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध।
श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इजराइल का मानना है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है और किसी भी रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद और उसके समर्थकों का विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। श्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल और भारत नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है।
The future belongs to those who innovate.
भविष्य उन्हीं का है जो निर्माण और नवाचार करते हैं। इजराइल और भारत नवाचार के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम गौरवान्वित प्राचीन सभ्यताएं हैं। हमें अपने अतीत पर बहुत गर्व है और हम साथ मिलकर भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं।
And we can do it better together.
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप जैसे क्षेत्र शामिल हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने कहा कि श्री मोदी और श्री नेतन्याहू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वर्तमान संयुक्त आयोग को मंत्री स्तरीय स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
Overall, this has been an incredibly
यह एक बेहद उपयोगी यात्रा है जिसने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत किया है। यह विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी की समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने तथा शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए द्विपक्षीय विशेष रणनीतिक साझेदारी को प्रभावशाली बनाने के लिए दोनों नेताओं की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
मोर प्रोडक्टिव एंड इम्पैक्टफुल।
प्रधानमंत्री की यात्रा कवर कर रहे हमारे विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया ने बताया, श्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
इसराइल की दो दिवसीय सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज भारत लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में कई कार्यक्रम शामिल थे, जिनमें एक था प्रधानमंत्री का इजरायली संसद कनेसेट को संबोधन। अपने 30 मिनट से अधिक समय के भाषण में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की थी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई में अपना स्पष्ट रूप से समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पश्चिम एशिया की शांति और स्थिरता वैश्विक शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बुद्धिमत्ता, साहस और मानवता के साथ संवाद के माध्यम से हर संघर्ष के समाधान के प्रति भारत के रुख की वकालत की। प्रधानमंत्री ने कल एक टेक्निकल प्रदर्शनी का भी दौरा किया था, जिसमें शीर्ष इजरायली तकनीकियों का प्रदर्शन किया गया था। दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री ने होलोकास्ट में नाजी हमले में मारे गए 6 मिलियन यहूदियों की याद में बनाए गए स्मारक का भी दौरा किया। आज प्रधानमंत्री ने इजरायली राष्ट्रपति एजक हर्जोग से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के प्रति संतुष्टि और आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कनेसेट के स्पीकर पुरस्कार के लिए धन्यवाद, इसको मैं भारतीयों और भारत इजराइल मित्रता को समर्पित करता हूं। यह पुरस्कार कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कल भारत के 4 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचेंगे। श्री कार्नी की भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री कार्नी विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री कार्नी 2 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता का 3रा दौर आयोजित किया। दोनों पक्षों ने चर्चा को सकारात्मक बताया, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंचने से इंकार कर दिया। सैन्य संघर्ष को टालने के लिए इन वार्ताओं को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते पर सहमति न बनने की स्थिति में ईरान पर हमला करने की धमकी दी है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक कृत्य बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामाबाद के नागरिकों को निशाना बनाया गया। 22 फरवरी को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में हवाई हमले करने का आरोप लगाया था। प्रवक्ता ने पाकिस्तान पर ISIS आतंकवादियों से लड़ने के बजाय उन्हें सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने का भी आरोप लगाया। हाल ही में अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने कहा था कि नंगरहार और पत्तिका पर पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। भारत ने जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 23 फरवरी से 31 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में भारत ने पाकिस्तान दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं से बिल्कुल विपरीत है। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में चेन्नई में भारत ने जिम्बाब्वे को 257 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में जिम्बाब्वे ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 256 रन बनाए। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में 55 रन और हार्दिक पांड्या ने 23 गेंद पर नाबाद 50 रन की पारी खेली। दिन में हुए एक अन्य मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच यरूशलम में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के पारस्परिक संबंध विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के ऐतिहासिक निर्णय को रेखांकित किया। पश्चिम एशिया में अमेरिका की व्यापक सैन्य तैनाती के बीच अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की जिनेवा में वार्ता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को शर्मनाक हरकत बताते हुए इसके निंदा की, जवाबी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 257 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।